आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मन जीते जगत जीत, कैसे मन को जीते तो जगत जीत लेंगे। अभी हमारे सामने आदरणीय भावना बहन है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार हम सभी इतने लकी हैं, जिन बहनों से नहीं मिलना होता है, क्योंकि ये सभी फॉरेन से बहने हैं और उनका अनुभव सुनने का लाभ हम लोगों को मिल रहा है, तो हम कितने लकी हैं। तो आदरणीय भावना बहन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल्यकाल से आप विद्यालय से जुड़े और पहले से ही इनके अंदर ये भावना थी कि हम लोगों की मदद करें, उनकी सेवा करें। तो 14 वर्ष की आयु में आपने लौकिक स्कूली विषयों को पढ़ते हुए ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा द्वारा पढ़ाई वो भी आपने पढ़ते रहे। दोनों का ही अच्छा संयोजन किया। आपने ग्रेजुएट करने के बाद अपनी मास्टर डिग्री इन कंपैरेटिव रिलीजन में गुजरात यूनिवर्सिटी से पूरा किया। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ इन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का प्रचार प्रयास करने के लिए आजीवन समर्पित होने का निश्चय किया। 33 वर्षों से न्यूजीलैंड में आप सेवाएं अपनी प्रदान कर रही हैं। उसके साथ साथ यूरोपियन देशों माउरी, फिजिशियन, इंडियन, श्रीलंका, मलेशिया में भी आपने अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान की हैं। अक्टूबर 2001 में आपको सिविक ऑनर अवार्ड सिटी मेयर के द्वारा प्राप्त हुआ और आप अपनी सेवाएं इंडिया रेडियो और फिजी रेडियो में भी निरंतर देती रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट में भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो बहन के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, शांति और खुशनुमा आपका व्यक्तित्व है। जो भी आत्मा आपके संपर्क में आती है, आप उन्हें प्रभावित कर लेती हैं।
बहन ने आपको सुनाया। आज का विशेष हमारा टॉपिक है संतुष्टता की शक्ति। कहते हैं संतुष्टता की शक्ति एक महान शक्ति है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का एक श्रृंगार है। जैसे वो स्थूल में श्रृंगार करते हैं, वो शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन ये संतुष्टता की जो शक्ति है वो हमारी आत्मा का श्रृंगार है। जब आत्मा इस शक्ति से अपने आप को श्रृंगारती है तो अपने आप अंदर से आत्मा भरपूर बन जाती है। तो जो व्यक्ति ये शक्ति का श्रृंगार करता है, सदैव आप देखेंगे कि उसकी आत्मिक स्वरूप रूपी बिंदी चमकती रहेगी। उसके चेहरे पर एक प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सदा आपको दिखाई देगी। अंदर में संकल्प होगा कि मुझे बाबा के गले का हार बनना है। सदैव उसके हाथों में पवित्रता के कंगन लगे हुए रहेंगे। उसके कमर पर श्रीमत का कमरबंद लगा हुआ होगा और वो ज्ञान योग के घुंघरू से वो आत्मा सदा नाचती हुई दिखाई देगी। जिस कारण कहते हैं कि ये शक्ति ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। संतुष्टता की शक्ति एक बीज का काम करती है। जैसे आप सबको मालूम है कि झाड़ का बीज बहुत छोटा होता है और उस छोटे से बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है। तो तो उसी प्रकार ये जो संतुष्टता की शक्ति एक बीज का काम करती है, जब हमने उस शक्ति को अपने जीवन में धारण कर लिया तो अपने आप और सारी शक्तियां और सारे गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे। जैसे आप देखो, वृक्ष को जब हमें हरा भरा रखना है तो जनरली हम उसकी जड़ों में पानी सींचते हैं, डालियों पत्तों पर पानी नहीं सींचा जाता। तो उसी प्रकार अगर मुझे अपने आप को सर्व गुण से संपन्न बनाना है तो सबसे पहले मुझे अपने जीवन में यही संतुष्टता की शक्ति को धारण करना होगा, जिस आधार से और शक्तियां और गुण अपने आप हमारे जीवन में आते जाएंगे। संतुष्टता की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें इच्छा मात्रम अविद्या बना देती है। जैसे बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, इच्छा कभी हमें अच्छा नहीं बनने देती। अगर थोड़ी सी भी मेरी कोई दुनियावी इच्छाएं हैं, तो वो इच्छा रखने से वो इच्छा पूरी भी नहीं होती है। लेकिन जब हम उन इच्छाओं से उपराम हो जाते हैं तो अपने आप हमारी शुभ इच्छाओं को बाबा पूर्ण कर देते हैं। तो ये संतुष्टता की शक्ति को जब हम धारण कर लेते हैं ना, फिर कोई हमारी दुनियावी इच्छाएं नहीं रहती है। सब प्रकार के इच्छाओं से आत्मा उपराम हो गई, क्योंकि अंदर से भरपूरता का अनुभव होता है। जैसे आप सबको मालूम है कि जब घड़ा भरपूर होगा तो वो स्टेबल स्थिर रहेगा, लेकिन जब घड़ा अधूरा है तो क्या होगा, छलकता रहेगा। तो उसी प्रकार जब हमारे जीवन में ये संतुष्टता की शक्ति है, यानी मैं अंदर से भरपूर हूं, तो मेरी स्थिति रहेगी अचल, अडोल और स्थिर। अगर ये शक्ति की कमी है तो क्या होगी, स्थिति हमारी हलचल में आ जाएगी, छोटी छोटी बातें हमें अफेक्ट कर लेगी। तो ये संतुष्टता की शक्ति की महिमा है। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरलियों में भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो ही संतुष्ट मणि। सुना है ना आप सबने, बाबा ने ये टाइटल दिया हुआ है। अब संतुष्ट मणि किसको कहेंगे या? तो बाबा ने ये भी बात हम बच्चों को बताई है कि संतुष्ट मणि उसको कहा जाता जो आत्मा अपने आप से भी संतुष्ट रहे, दूसरों से भी संतुष्ट रहे और बाबा से भी संतुष्ट रहे। जब ये तीन सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होते हैं ना, तब हम कहलाते हैं संतुष्ट मणियां। तो पहली बात है अपने आप से संतुष्ट रहना है। अब अपने आप से हम संतुष्ट कैसे रहेंगे? कई बार छोटी मोटी बातें आती है हमारे जीवन में, वही छोटी मोटी बातें कभी कभी अपसेट कर देती है। तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो स्वमान होता है वो कम हो जाता है। कि जैसे ही हमारा स्वमान कम हो जाता है तो स्वमान को कम होने के कारण फिर हम अपने आप से खुश नहीं रह सकते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में मुझे ध्यान रखना होगा कि हमारा सुमान कभी कमती नहीं हो, हम उसको बढ़ा करके रखे। तो कैसे हम अपने सुमान को इस जीवन में बढ़ाए? तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को बहुत सारी युक्ति प्रयुक्तियां समझाते रहते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं कि जब भी पता चले कि भाई हमारा सुमान थोड़ा कमती हो रहा है, तो उस समय हमें अपने आप को ऐसे कोई नेगेटिव नकारात्मक विचारों से अपने आप को एंटरटेन नहीं करना है, परंतु उस समय मुझे याद दिलाना होगा कि मुझे अपने अंदर अपनी चर्निंग पावर, उसको मंथन करने की जो शक्ति है, उसको मुझे अपने में यूज करनी है। नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे शास्त्रों में भी एक कहानी लिखी हुई है जो आप सबको मालूम भी है, मुरली में भी सुनते हैं। एक बार कहते हैं ना कि देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत बड़ी कंपटीशन हुई और दोनों ने डिसाइड किया समुद्र मंथन करने का। तो बहुत बड़ा जॉब था, तो दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया। तो जब वो समुद्र को चर्न कर रहे थे ना, तो सबसे पहले उस मंथन में से कौन सी चीज निकली? जहर निकला, पॉइजन, या जो देवताओं को भी नहीं चाहिए था, असुरों को भी नहीं चाहिए था। तो फिर वो जो जहर निकला वो शिव बाबा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, भक्ति में शंकर का नाम दिया है, लेकिन वो हमारे बाबा थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोबारा वो चर्निंग करने का कार्य शुरू किया, तो फिर अंदर से बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकली, या लक्ष्मी माता निकली, 9 jewels रतन निकले, या बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकली जो सभी को चाहिए थी। या तो बाबा कहते हैं सेम थिंग हैपन्स विथ अस। हम लोग भी जब विचार सागर मंथन करने का कार्य करते हैं ना, सबसे पहले कौन सी चीज निकलती है? व्यर्थ संकल्प आएंगे, बुरे संकल्प आएंगे, तो जहर ही तो निकलता है ना। तो कई बार ऐसे विचार आते हैं तो बाबा के बच्चे डर जाते हैं कि भई हम तो विचार सागर मंथन करने बैठते हैं, ये तो और बातें आती है। तो फिर क्या करते, वो विचार सागर मंथन करना छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जो हमारी यादगार हमारे शास्त्रों में है वो हमें याद दिलानी होगी। या तो देखो, जब ऐसा पॉइजन निकला तो हमें क्या करने का? शिव बाबा को दे देने का। शिव बाबा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि भक्ति में भी उसने किया है, ज्ञान में तो हमारा अधिकार बनता है, तो उस अधिकार से हम बाबा को दे देवे। लेकिन फिर भी वो चर्निंग करने का कार्य हमें चालू रखना है। तो चालू रखेंगे तो इवेंचुअली अंदर से बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स इमर्ज होगी। और यही जो अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स, जिसको बाबा क्रीम कहते हैं, जब वो इमर्ज होता है तो वो हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना देता है, और हमारा जो सुमान है वो बना हुआ रहेगा, कमती नहीं होगा और बढ़ेगा। या तो बेस्ट मेथड है स्वमान को बढ़ाने की, वो है विचार सागर मंथन। कभी कभी बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि जो बाबा ने हमारे लिए सुंदर सुंदर गाने बनाए हैं, गीत बनाए हैं, या तो कभी कभी उन गीतों को भी हम यूज करें। जैसे लगता है कि मेरी स्थिति थोड़ी सी डाउन होने वाली है, तो तुरंत आप उन गीतों को बजाया करें, और जितना जितना हम गीतों को सुनते जाएंगे ना, तो उसके भावों में हम खोते जाएंगे, या और फिर हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी और हमारा सम्मान ठीक हो जाएगा। या कभी कभी अगर ऐसे लगता है कि मेरी स्थिति पर थोड़ा असर हो रहा है, तो आप क्या करो, जो बाबा से दादियों से हमें जो भी वरदान मिलते हैं, उन वरदानों की स्मृति में हम जब रहते हैं, तो बाबा के वरदान भी हमारी स्थिति को पावरफुल बना देते हैं। जब शुरू शुरू में हम लोग ज्ञान में आए थे तो मुझे याद है मैं पहली बार बाबा को मिली थी बाबा के कमरे में। आप सबने देखा है ना पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है, अभी तो बड़ा बना दिया है, पहले आधे साइज का था। या दादी भी ऐसे नीचे कुशन पर बैठती थी, हम लोग भी गोल गोल बैठते थे। या तो याद करो वो दिन को, पहले पहले बाबा ऐसे मिलते थे, आज देखो या डायमंड हॉल में या इतनी बड़ी सभा में बाबा आते हैं। तो शुरू शुरू तो बाबा एक एक बच्चे से मिल करके उन्हें वरदान देते रहते थे। तो चलो आज बाबा से हमें पर्सनल वरदान नहीं भी मिले, लेकिन हमारी दादियां भी तो बाप समान है ना, ना जब दादी से मिलते हैं, जो भी वरदान आपको दादी से मिलते हैं, उन सारे वरदानों की स्मृति हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। हमारे पास एक अंग्रेज भाई आता था, अभी भी है बाबा के साथ, तो वो 25 साल से ज्ञान में है। तो आप इमेजिन करो 25 साल में उसे बहुत सारे वरदान मिले हुए थे, जो ब्लेसिंग कार्ड आप लोगों को भी मिलते हैं ना, तो ऐसे ब्लेसिंग कार्ड 25 साल में ढेर सारे उसने संभाल के रखे हुए थे। तो उसने क्या किया, वो सारे ब्लेसिंग कार्ड्स की अपने कमरे में एक एग्जीबिशन बना दी, प्रदर्शनी। या फिर मुझे अपना अनुभव सुनाते हुए कहता था कि बहन जी कभी कभी कुछ बातें आ जाती है, अगर मैं अपसेट हो जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सीधा अपने कमरे में जाता हूँ, कमरे में जाकर के एक एक बाबा के वरदान जो मेरे को मिले हुए हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ, और ये पढ़ने में मुझे 30 से 40 मिनट लगता है, लेकिन 40 मिनट के बाद मैं देखता हूँ तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी और पावरफुल बन जाती है। या तो आप देखो बाबा के वरदान ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, भगवान के वो शब्द है, बड़े पावरफुल शब्द है। तो वो पावरफुल शब्द भी हमें पावरफुल बना देंगे। या तो कभी कभी वरदानों की स्मृति हमारे सम्मान को बढ़ा देगी। कभी कभी बाबा कहते हैं कि चलो परिस्थितियां आई, सिचुएशन तो देखो हर एक के आगे आती है। चलो आप लोग घरों में रहते हो तो आपके आगे परीक्षाएं आएंगी, उसी लेवल की आएगी। हम लोग सेंटरों पर रहते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के संस्कार और कल्चर वाले भाई बहनों से मिलते हैं, तो हमारे पास उस प्रकार की बातें आएंगी। देखो आज कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है, हर एक के आगे समस्याएं आती है, लेकिन मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। या जब भी बातें आती है ना, तो मुझे अपने आप को याद दिलाना होगा कि ये बातें आई है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, वैसे भी आप देखो समुन्दर में जो बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, किस लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए। वो जो सर्फर्स होते हैं ना, सर्फिंग करते हैं ना समुद्र में, या तो वो तो आह्वान करते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें आवे ताकि हम अच्छी तरह से सर्फिंग कर सके। या तो मुझे ऐसा पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाना होगा, और हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा तो हम अपने आप इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो एक कहानी में बताते हैं कि एक धोबी का डोंकी था, गधा था, उसने उसको बहुत मदद की थी, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया या तो फिर वो तो कोई काम का नहीं रहा, और ही धोबी को उसको लुक आफ्टर करना पड़ता था, देखना पड़ता था। या तो एक दिन धोबी ने सोचा कि अच्छा है ये कहीं मर जावे तो मुझे उसे खिलाना पिलाना तो नहीं पड़े। या तो उसने बहुत अच्छी एक दिन चाल चली, एक कुआं था, कुएं के ऊपर छोटा सा पतरा सा एक छोटा सा बोर्ड रख दिया, फिर गधे को बोला कि तुम यहाँ से चलो, तो वो जैसे चल रहा था तो वो तो सीधा कुएं में गिर गया। अब जैसे गधा कुएं में गिरा तो धोबी ने सोच लिया कि ये तो मर जाएगा, तो फिर उसने क्या किया, कुछ अपने साथीदार थे उन लोगों को बोला अब ये तो कुएं में गिर गया, अब क्या करो इसके ऊपर मिट्टी डाल दो ताकि वो कम्प्लीटली खत्म हो जावे। या तो इन्होंने मिट्टी के वो बड़े बड़े बर्तनों में मिट्टी डाल करके उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मिट्टी डलती थी ये गधा ऊपर आता गया। या एंड बाय द टाइम इतना सारा वो मिट्टी हो गया कि वो कुएं का लेवल आ गया, गधा ऊपर ऊपर आता गया और फिर उसने चलना शुरू कर दिया, बाहर निकल गया। तो कहने की ये बात है कि चलो बातें आएंगी हमारे सामने, लेकिन हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। या कभी कभी सोचो कि ये समस्याएं मेरे सामने क्यों आती है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए आती है। क्योंकि बातें ही नहीं आएंगी तो हम अपने आप को कैसे परखेंगे कि मेरी कितनी उन्नति हुई है, कितना हम आगे बढ़े हैं। या तो ये जो बातें आती है वो हमें अनुभवी बनाने के लिए भी आती है। देखो आपको अनुभव होगा तो अनुभव के आधार से आप दूसरे किसी को वही बात सुनाएंगे, तो अनुभव की हुई बात दिल से निकलती है और दिल से निकलने वाली बात सीधी दिलों को लगती है। जो दिमाग से बातें आती है ना वो दिमाग को ही टच करेगी, भूल जाएगी, लेकिन दिल से निकलने वाली बातें दिल को टच करती है। और जब कोई बात दिल में टच हो गई तो फिर उसका परिवर्तन सहज ही आता है। तो इस प्रकार कैसे भी करके मुझे अपने सम्मान को बढ़ाना होगा, तब मैं अपने आप से संतुष्ट रह पाऊंगी। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि भाई दूसरों से भी मुझे संतुष्ट रहना है। अब दूसरों से हम संतुष्ट कैसे रहेंगे, चलो अपने आप को तो कैसे भी करके आप लुक आफ्टर कर लो, लेकिन दूसरों को हम कैसे संभाले। हम जो भी कुछ दूसरों के लिए करते हैं, दूसरे हमेशा उसमें कोई ना कोई आपकी गलती ढूंढते रहते हैं, तो दूसरों को खुश करने के लिए मैं क्या करूं। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि दूसरों को खुश करने के लिए सबसे पहले या मुझे हर आत्मा को रिगार्ड और रेस्पेक्ट देना होगा। अगर वो आत्मा मेरे से सीनियर है तो आप उसको रिगार्ड देते रहो, अगर वो व्यक्ति मेरे से जूनियर है तो उसे प्यार देते रहो। तो जितना मेरा ये रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रहेगा उतना उतना दूसरे भी मेरे से खुश रहेंगे। दूसरी बात, कभी कभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर देते हैं ना, जैसे कि किसी को आपने 10 बार रिगार्ड दिया, उसने आपको एक बार भी नहीं दिया, तो हम लोग गिनती करना शुरू कर देते हैं कि मैंने उसको 10 बार ही दिया, उसने एक बार भी नहीं दिया। तो क्या होता है जब हम गिनती करना शुरू करते हैं ना, तो अच्छे कर्मों का जो फल मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। या तो उस समय मैं क्या याद दिलाऊं अपने आप को। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि उस समय हम अपने आप को कर्म की फिलॉसफी याद दिलाएं कि भी कर्म का ये सनातन सिद्धांत बना हुआ है कि अगर मैं अच्छा कर्म करूंगी तो मुझे उसका अच्छा फल अवश्य ही मिलेगा। अगर ये कर्म की फिलॉसफी को हम सदा याद रखेंगे तो फिर हमारे से अच्छे कर्म होते रहेंगे। या और हमारे कर्म अच्छे रहे तो जरूर हमारा भाग्य भी बनता जाएगा, तो फल भी निश्चित है। तीसरी बात, दूसरों को खुश करने के लिए मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी होगी। चाहे वो व्यक्ति कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। हमारी शुभ भावना एक दिन उस व्यक्ति की बुरी भावनाओं को बदल देगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाती हूँ। एक बार मैं कोई देश में थी तो वहां पर क्या था, सेंटर पर एक बहन थी, वो आती थी। और ये बहन ने बाबा को बहुत अच्छी तरह से समझा था, बाबा से प्यार था, सेंटर से भी प्यार था, बहनों से भी अच्छा संबंध था, तो ये सेंटर पर आया करती थी। लेकिन उस बहन का जो पति था वो विदेशों में ब्रॉटअप हुआ था, या तो उसके इतने आध्यात्मिक संस्कार नहीं थे उसके अंदर, तो समहाउ उसको ये धर्म अध्यात्म की बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो वो इस माता को स्टॉप करता था कि तुम्हें सेंटर पर नहीं जाना चाहिए, या लेकिन ये बहने कोई न कोई प्रकार की युक्ति प्रयुक्ति या बहाने निकाल करके वो आ जाया करती थी सेंटर पर। तो एक दिन उसको पता चला कि ये अभी भी सेंटर पर जाती है, तो फिर ये उसका पति बहुत नाराज हुआ, उसने बहुत गुस्सा किया। और हम सबको पता है कि जब व्यक्ति गुस्सा करता है ना, गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, उसको खुद को भी नहीं पता होता क्या बोलता है, या तो गुस्से में आकर के उसने इस बहन को भी डांटा। मैं भी उस व्यक्ति को मिली हुई थी तो मेरे को भी अच्छी गालियां दी उसने। तो ऐसे ये सारा इंसिडेंट पूरा हो गया। फिर वो बहन ने मुझे फोन पर बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने उस माता को बोला कि इट्स ओके, उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि सच्ची बात क्या है, इसलिए उसने आपको और मेरे को गाली दी, कोई बात नहीं। हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखें और हमारी शुभ भावना उसको जरूर मदद करेगी। या तो फिर क्या हुआ कि सेंटर पर कभी कभी प्रोग्राम्स होते थे, तो मैं उस व्यक्ति को बहुत प्यार से फोन करके उसे निमंत्रण देती थी, बुलाती थी। परंतु ये जो व्यक्ति था ना, he used to hate me, या अच्छी तरह से वो बात भी नहीं करता था फोन पर। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि इट्स ओके, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो आई विल बी कीप डूइंग, ना मैं करती रहूंगी अच्छा काम। या तो कभी कभी कोई अच्छा दिन होता था, त्योहार होते थे, तो मैं विश भी करती थी, इनवाइट भी करती थी। और हर बार ये व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं बात करता था। या फिर क्या हुआ, 5-6 महीने हुए होंगे, फिर एक दिन उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर रियलाइजेशन हुई, महसूस, ताकि शक्ति उसमें वो आई, उसने महसूस किया कि पता नहीं हर बारी ये बहन मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात करती है, व्यवहार करती है, परंतु मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो फिर उसने उसकी वाइफ को बताया कि आप लोगों के पास ऐसी शक्ति आती कहाँ से है, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे तुम लेके जाओ अपने सेंटर पर। तो ये माता खुश हो गई, या उसको लेकर के आई सेंटर पर। फिर हम लोग बैठे, उससे बातें की, उसकी जो रॉन्ग इम्प्रेशंस थी उसके माइंड में उसको सॉर्ट आउट किया। फिर मैंने उसको एनकरेज किया कि भई आप आए ही हो भगवान के घर में, क्यों नहीं यहाँ का 7 दिन का थोड़ा थोड़ा कोर्स आप कर लो। या तो बाबा के घर में वो व्यक्ति बैठा हुआ था तो ना नहीं कर सका, हाँ बोल दिया। या तो फिर कोर्स किया। तो मुझे याद है जब मैं उसको फाइनल लेसन दे रही थी तब वो एकदम रोने लगा, फिर मुझे कहने लगा कि बहन जी मैंने जो जो किया है ना वो सब बातें मुझे याद आ रही है, मैंने बहुत बुरी तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार किया, ये बोला ये कहा या, तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई जी उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपको सही बातें पता नहीं थी और हमारे अंदर तो सदैव आपके प्रति गुड विशेष रही है या। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अगर किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो वो हमेशा काम करती है, परंतु इट टेक्स टाइम या थोड़ा समय लगता है। हमें अपने में सहनशीलता और धैर्यता की शक्ति को धारण करना पड़ता है या, तो हमारी शुभ भावना जरूर काम करती है। फिर वो दोनों बाबा के बच्चे बन गए और सेंटर पर दोनों आते हैं या। तो इस प्रकार से शुभ भावना रखने से भी हम औरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि बाबा को संतुष्ट हम कैसे करें। देखो बाबा तो हमारा है ही भोलानाथ या, बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं बाबा। तभी तो मुझे याद है हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, कितने भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं, उन सब में आप देखो शिव बाबा को भोलानाथ बाबा कहते हैं या, सभी ने उनको बहुत याद किया है। हमारे भारत देश में तो कितने सारे शिव बाबा के मंदिर हैं, बहुत सारी यादगारें हैं या। तो बाबा को ऐसी कौन सी चीज चाहिए, बाबा कैसे संतुष्ट होगा। जैसे मुझे याद है भक्ति मार्ग में जब भक्ति हम सभी करते थे, भगवान के पास जाते थे तो क्या करते थे, बड़ा लंबा लिस्ट लेकर के जाते थे, करते थे ना, रोज भगवान को याद दिलाते थे कि भगवान ये काम मेरे लिए आप कर दो या, मांगते रहते थे। अभी तो खैर बाबा के बच्चे बन गए, हमारा मांगना तो छूट गया, लेकिन बहुत रॉयल ढंग से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा भी हमारे लिए बहुत कुछ कर दे दे ना, रॉयल ढंग से चिटचैट में कहते हैं ना बाबा से, बाबा जो कहता है वो हम करें या ना करें वो अलग बात है या, लेकिन हम जो कहते हैं वो बाबा को जरूर करना है या। तो इस प्रकार से रॉयल ढंग से हम बाबा से बहुत कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं या। तो बाबा हमारी चाहना पूरी कब करते हैं, तो उसके लिए हमें एक गुण अपने में धारण करना होगा, वो गुण है ऑनेस्टी, ईमानदारी। जितना जितना हम बाबा के साथ ऑनेस्ट रहेंगे ना, उतना उतना हमारी सारी मुरादे बाबा पूर्ण कर देगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक बार मैं कहां पर थी, कोई देश में, तो वहां पर क्या था, मंदिर में प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैं मंदिर में गई, प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम के बाद वहां पर एक युगल था, वो मुझे मिलने के लिए आए। तो इन्होंने मुझे कहा कि बहन जी, इस देश में हमने एक बहुत सुंदर हमारा घर बनाया है, क्यों नहीं आप हमारे घर में आओ, थोड़ा घूम जाओ घर में या, तो हमारा घर पावन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति में तो ऐसे मानते हैं ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, आप मुझे कल लेने के लिए आ जाना। तो दूसरे दिन फिर आए, मुझे लेके गए, तो बहुत सुंदर बड़ा सा मकान बना हुआ था, समुद्र का किनारा था, ऊंची पहाड़ी थी, बहुत अच्छा घर था। तो फिर मुझे उस भाई ने पूरे घर में घुमाया, कोई कमरा बाकी नहीं रहना चाहिए या, तो लास्ट में फिर मुझे एक कमरे में लेके गया, वो कमरा था इनका पूजा का कमरा या। तो मैं वो पूजा के कमरे में जाके देखा तो ढेर सारे देवी देवताओं के फोटोज और मूर्तियां रखी हुई थी। खैर 33 करोड़ तो नहीं थे, बट क्वाइट क्लोज या, काफी सारे थे। तो मैं एक एक को देख रही थी, या देखते देखते पता नहीं मेरे मुख से कोई शब्द निकल गए, तो बोल दिया मैंने कि अरे यहाँ तो बच्चे ही बच्चे हैं, बाप तो है ही नहीं। तो वो भाई मेरे बाजू में खड़ा था, वो हैरान हो गया। तो वो मेरे को कहता है, बेंजी इसका मतलब क्या, आप कहते हो बच्चे ही बच्चे हैं, बाप है ही नहीं, तो बाप कौन है? तो मैंने कहा कि भाई परमात्मा शिव, वो तो सबका बाप है, उसका चित्र तो है ही नहीं आपके रूम में, या शिवलिंग भी है नहीं। तो फिर वो मेरे को कहता है, बेन जी बाप भी है। तो मैंने कहा किधर है? तो कहता घर के बाहर में है। क्योंकि इन देशों में क्या करते हैं, शिवलिंग को घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि अंदर में वो गालीचा कारपेट वगैरह होता है, और शिवलिंग के पर तो दूध चढ़ता है, पानी चढ़ता है। तो आप सोचो घर में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शिवलिंग को घर के बाहर में रखते हैं। तो मैं तो हैरान हो गई, बस ऐसे ही बाबा से चिट चैट किया। मैंने कहा बाबा देखो ज्ञान मार्ग में तो आप कितने भोले हो, हम लोगों ने अनुभव किया है, परंतु भक्ति में भी आप कितने भोले हो, अपने बच्चों को अच्छी तरह से अंदर में कमरे में बिठाया है और आप घर के बाहर में बैठे हुए हो। तो खैर मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात को कहीं पर प्रोग्राम था जिसमें मुझे बोलना था परमात्मा का परिचय, ये टॉपिक था। तो फिर मैंने मेक श्योर किया कि ये जो युगल है वो उस प्रोग्राम में आवे, और उन लोगों ने कमिट किया कि हम आएंगे। या तो फिर उस रात को प्रोग्राम था, उसमें वो लोग आए, आकर के सुना परमात्मा का परिचय, सुन करके उनके कपाट खुल गए। या फिर वो घर आए, सोचने लगे, आपस में बातें की कि अरे परमात्मा शिव हाईएस्ट ऑन हाई, ऊंचे ते ऊंचा, जिसको हमने घर के बाहर में बिठाया। या तो फिर चुपचाप रात को शिवलिंग को घर के अंदर ले आए। फिर सवेरे क्या हुआ, उनका वो नियम था दूध चढ़ाने का, पानी चढ़ाने का। तो फिर कंफ्यूज्ड हो गए कि अब कैसे दूध पानी चढ़े। तो फिर मेरे को सेंटर पर फोन किया, मेरे को बताया, बहन जी आपका वो लेक्चर सुन करके हम परमात्मा शिव को घर के अंदर तो ले आए, लेकिन ये दूध पानी कैसे चढ़े अब उसके ऊपर। तो मैंने कहा कि देखो भाई जी, आपने बहुत दूध पानी इनके ऊपर चढ़ाया है, और आपके इस चढ़ावे से परमात्मा शिव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए मेरे को भेजा है आपको गुड न्यूज देने के लिए कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो आपके ऊपर खुद ज्ञान की लोटी चढ़ाने आए हुए हैं, क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर इस कपल ने, युगल ने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर वो बाबा के बन गए। तो जहाँ उनके घर में जो पूजा का कमरा था वो बाबा का रूम बन गया। तो पहले देवी देवता अंदर थे, बाप बाहर में था, फिर बाप अंदर आ गए, देवी देवता। तो इस प्रकार से आप देखो भक्ति में भी बाबा को तो बहुत भोला नाथ कहते हैं और उसको बहुत याद करते हैं। तो वही भोला नाथ बाबा हम बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बाबा के बच्चे भी ऐसे ही बाबा के साथ सच्चे, ईमानदार, फरमान बरदार और आज्ञाकारी बन करके बन रहे। जब हम इन गुणों को धारण करेंगे ना, तो हमारा बाबा हमारे से जरूर खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। तभी तो देखो मुरली में हम लोग सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी, या साहेब को मुझे खुश करना है, तो जो मैं अंदर में हूँ वही मेरा बाहरी रूप होना चाहिए, या ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, अंदर बाहर एक। जैसे हमारे में कहावत है ना, मुख में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं। या कई लोग आप देखो दोहरा व्यक्तित्व होता है, ऊपर से सुपरफिशियल लेवल तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं कर सके, तो इस प्रकार का दोहरा व्यक्तित्व वो ऑनेस्टी नहीं है, वो ईमानदारी नहीं है। तो ऐसी अंदर और बाहर की दोनों प्रकार की जब ऑनेस्टी हमारे जीवन में होगी, तो हमारा बाबा भोला ने अनाथ बाबा को भी हम संतुष्ट कर सकेंगे। तो तीनों को संतुष्ट करने के लिए एक एक बात हमें याद दिलानी होगी। खुद को संतुष्ट रखने के लिए मुझे अपने स्वमान को बढ़ाना है, दूसरों को खुश करने के लिए मुझे प्यार और रिगार्ड, ये दो गुण के पर विशेष ध्यान देना है, और बाबा से संतुष्ट रहने के लिए मुझे अपने अंदर ऑनेस्टी, सच्ची दिल रखनी होगी, तब जा करके हम बन सकेंगे बाबा के संतुष्ट मणि बच्चे। और जब ऐसे संतुष्ट मणियां बन गई, तो देखो संतुष्ट मणियों का क्या काम है, या खुद भी चमकती रहेगी, दूसरों को भी खुश करती रहेगी, क्योंकि जो संतुष्ट आत्मा है ना, उसकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी होगी कि वो हमेशा अपने आप से खुश, जो भी उनके संबंध संपर्क में आएंगे वो भी उनसे खुश रहेंगे। तभी देखो हमारे में बहुत अच्छी कहावत है ना, कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट। तो ऐसी खुशी की खुराक हम भी खाते रहे और दूसरों को भी सदा हम खिलाते रहे। ओम शांति।